हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 25। शनः शनैर् उपरमेत् बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही डीप श्लोक है, थोड़ा इस पर विचार करेंगे। जब हम भक्ति करने की शुरुआत करते हैं तो हमको बताया जाता है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो और सुबह उठो और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो भक्ति की शुरुआत में भी हमारा जो मन है वो भोगों में ही आसक्त रहता है और हम भक्ति का अभ्यास करते हैं भले ही हमको शुरुआत में उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन करते 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 भगवान की भक्ति में राग उत्पन्न होने लगता है। जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता है उतनी मात्रा में राग उत्पन्न होने लगता है, आसक्ति होने लगती है। फिर जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के, इनके प्रति स्वतः ही हमारा वैराग्य, वैराग्य मतलब कि ये अच्छा है, ये भावना भी मन से समाप्त हो जाती है। थोड़ा अंतर समझिएगा। त्यागने का अर्थ है कि मैं बुद्धि से सोच रहा हूं कि ठीक है, अच्छा नहीं है, इसलिए मैं त्याग रहा हूं, लेकिन मन उनमें जाता है। हम सबका अनुभव इस प्रकार से है। लेकिन वैराग्य का अर्थ ये है कि उसमें उपादेय बुद्धि की अच्छा है यही खत्म हो जाए। जैसे कि ये तो बड़ा आसान है, वैसे भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उन लोगों के लिए शराब छोड़ना और मांस छोड़ना ये बहुत आसान हो जाता है। उसके प्रति वैराग्य तो बड़ी आसानी से हो जाता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि स्त्री के विचारों से व्यक्ति तुरंत मुक्त ना हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ा बंधन ये माया का होता है बद्धात्मा के ऊपर, तुरंत नहीं छूटता है। लेकिन धीरे 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 भक्ति का अभ्यास करते हुए व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि मेरा ये शरीर है, मैं शरीर में हूँ, और जिस प्रकार से ये शरीर केवल कर्म जाल से बना हुआ है, अविद्या का जाल है, ऐसे हर किसी का शरीर अविद्या का जाल ही है। तो भोगों के विचारों से वो निवृत्त होता चला जाता है, जितनी जितनी मात्रा में माया से मुक्त हो जाता है। और भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के गुणों के ऊपर विचार करने में ही उसका मन लगा रहता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम शुरुआत में, भक्ति की शुरुआत में साधना करें, सुबह शाम साधना करें, डायरेक्ट श्रवण कीर्तन में लगें और दिन में अपने उन कार्यों को करें जो हमें करने अच्छे लगते हैं और उनको संबंध भगवान से जोड़ लेना चाहिए। तो इसके द्वारा हम भगवान के चिंतन करते रहते हैं। लेकिन एक स्थिति आ जाती है कि फिर उन कार्यों, वो कार्य भी नहीं होते हैं, सुबह से शाम तक व्यक्ति केवल श्रवण कीर्तन में लगा रहेगा। तो आप कहेंगे जीवन के निर्वाह कैसे होगा? तो प्रहलाद महाराज कैसे होता था? भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चे की खाने पीने, टॉयलेट जाने सबकी व्यवस्था उसकी माँ करती है, इस प्रकार से भगवान पूरा चार्ज ले लेते हैं हमारे जीवन का, हमारे इंद्रियों का, और पूरे हमारे इंद्रियों में व्याप्त हो जाते हैं। तो ये स्थिति धीरे धीरे होती है, तुरंत तो नहीं होता है। जैसे कि आप गोस्वामी गणों के संग देखते हैं, उनकी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग के पास मोटरसाइकिल होती है तो हम मोटरसाइकिल चलाते 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 देखते हैं, अरे पेट्रोल कम हो गया, मुझे पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। उसी प्रकार से उन लोगों को याद ही नहीं रहता था, कार्य तो शरीर से कर रहे थे लेकिन उनको याद नहीं रहता था कि खाना कब खाया है, नींद लास्ट टाइम सोए कब थे, इस प्रकार से। तो ये अद्भुत चेतना है जिसको व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है अगर वो भक्ति को नियमित रूप से करता रहे। तो मैंने बोला था कि ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें प्रभुपाद प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब होता है अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को बाह्य वस्तुओं से हटा करके भगवान के चरणों में एकदम स्थित कर लेना। और इसको करने का तरीका क्या है ये भगवान 26वें श्लोक में बता रहे हैं। यतो यतो निश्चलति मनः चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम ये तद आत्मन्येव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छा श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। जब हम लोग कल नाम जप करने बैठेंगे तो हम सभी लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि मन भागता है और हरि नाम को नहीं सुनना चाहता, हरि नाम को नहीं पकड़ना चाहता। तो अब मन कहाँ भाग रहा है उस पर आसक्त मत होइए। चाहे स्त्री का विचार आए, चाहे धन का विचार आए, चाहे बच्चों का विचार आए, चाहे बिजनेस का विचार आए, कहीं पे भी जा रहा उससे मतलब नहीं है। उसे केवल खींच करके वापस मन को हरि नाम की ध्वनि पे केंद्रित करने का प्रयास करना है। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, इस पे मत ध्यान दीजिए कि मन कहाँ जा रहा है और आप सोचने लगे अरे मैं जब कर रहा हूं स्त्री का विचार आ रहा है, मैं जब कर रहा हूं पैसे का विचार आ रहा है। वो मन का स्वभाव ही है कि एक जगह स्थित नहीं हुए। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि खींच करके, और ये खींचने का कार्य ये संकल्प ये बुद्धि के द्वारा होता है, और बुद्धि का खाना होता है नींद। अगर नींद ठीक से, इसलिए नींद सही से लेनी चाहिए ताकि आपकी बुद्धि ठीक से चल पाए जब करते समय। निर्णय लेकर के मन को बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि पे केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अब बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि होता क्या है। आप लोग स्प्रिंग समझते होंगे, स्प्रिंग एक स्पाइरल के रूप में होती है और उन सभी छल्लों का एक केंद्र होता है। आप एक उनके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक केंद्र होगा, तो उन सभी का केंद्र जो लाइन है वो एक ही होता है। तो यानी कि अगर उस केंद्र पे फोकस किया जाएगा, उसी तरह से वो केंद्र है कृष्ण, अगर उस पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे जो स्प्रिंग है उसके छल्ले ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान यहां बोल रहे हैं, बार बार हमारा मन को अगर हम भगवान में लगाते हैं तो मन शुद्ध होता चला जाता है और हमारी चेतना ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी हो जाती है भगवान की तरफ, या कहते हैं और शुद्ध हो जाती है। और इसी बात को भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में बताते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुर यथैवाञ्जसतम प्रयुक्तम। कि जितनी जितनी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, भगवान के गाथा को, भगवान की गुणगान को सुनने से, श्रवण कीर्तन करने से, उतनी मात्रा में हम इस जगत की सूक्ष्मता को देख पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। जिस प्रकार से आंखों में अंजन लगाने से आंखों की ज्योति है वो क्रमशः बढ़ती चली जाती है, और पिछले श्लोक में भी शनह शनह क्रमशः की बात की जा रही है। तो इसीलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा। अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए पहले, और उसके बाद इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को भी उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम लोग संकल्प लेंगे कि हम बैठ के जप करेंगे, हम लोग हिलेंगे नहीं, या हम लोग क्या कहते हैं सोएंगे नहीं, हाथों को घुटने के पास रखेंगे, तो इस प्रकार से निश्चय करके व्यक्ति अपने शरीर को लगाता है, और फिर धीरे धीरे और इसके अभ्यास के द्वारा जब इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर अपने मन को भी लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद इस संबंध में बोलते हैं कि आपका मन उधर उधर भाग रहा हो, लेकिन अगर आप सुनने का प्रयास कर रहे हो तो कोई अपराध नहीं है। और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं कि मन तो भागेगा, इसे वापस अभ्यास करो अपने मुझ में लगाने का। मुझ में लगाने का मतलब भगवान के नाम में लगाने का। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है क्योंकि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, और ये सब तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है, और इस कारण से मन चंचल रहता है। किंतु स्वरूप सिद्ध योगी का वो मन में वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना मृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। एक कि मन जो गंदा मन है वो चंचल होता है, और ये इंटरेस्टिंग है कि मन भोगों में भी एक जगह नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति रसगुल्ले का चिंतन करना चाहे तो कितनी देर चिंतन कर पाएगा? 4-5 रसगुल्ले खा लेगा, फिर उसके बारे में कहेगा मुझे खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं एटलीस्ट कुछ देर के लिए। तो हम ये देखते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है, और ये बड़ी प्रेरणादायक बात है हमारे लिए कि मन केवल भगवान में ही स्थिर हो सकता है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जगत में हम अपने मन को बहुत जगह लगाते हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। धीरे धीरे हमें साक्षात्कार होगा कि हम भगवान से जितना भी विमुख होने का प्रयास कर लें, और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयास हो सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के, उन सारे प्रयासों से हमें केवल असंतुष्टि प्राप्त होगी। और बार बार मन इसी प्रयास में लगा रहता है कि मन को भगवान में न लगाना पड़े। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, वी विल रियलाइज दैट ऑल आवर डिस्ट्रैक्टिव मैनूवर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग अस। ये बहुत गहरी बात है। तो इसलिए अगर स्ट्रगल ही करना है तो अपने मन को भगवान में लगाने के लिए स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि इसी से मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा बात यहाँ पे है कि अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना। इसका अर्थ तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है कि भगवान के सेवा में इसको लगाए रखना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्रिय स्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख से मुझे क्या सुख मिलेगा, इसको एक भक्त समझता है, गोस्वामी समझते हैं। और हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। उनका शुरुआत होता है इंद्रिय भोग का, उसका अंत होता है, और वो हमको उसके बाद दुख देता है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योजना एवते आद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते बधा। इंद्रिय भोग ही हमारे दुखों का स्रोत है, और इसका शुरुआत और अंत हो जाता है। हम लोग इसीलिए असंतुष्ट रह जाते हैं। तो इस बात को समझ करके व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान बोल रहे हैं, उसमें रमण नहीं करता है, अपितु अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की, ऋषिकेश की सेवा में लगाता है, जो कि इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों की सहज स्वभाव है सेवा करना, लेकिन अपने स्वामी की सेवा करके संतुष्ट होंगी, और वो न कि विषयों की। तो ये स्वामी है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये भगवद्गीता से स्वीकार करके जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो हमको सुख मिलता है, और यही कृष्ण चेता कहलाती है। शुद्ध इंद्रियों का मतलब क्या है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त की जीभ जो है वो काली हो जाएगी, ये नीली हो जाएगी, ये पीली हो जाएगी, वो देखने में सामान्य जीभ जैसी लगेगी, लेकिन एक्चुअली इंद्रियां मुख्य रूप से मन के द्वारा संचालित होती हैं। तो हम कोई अनुभव करते हैं तो उस अनुभव के पीछे हमारा मन होता है। जैसे कोई स्त्री को देख करके एक कामी व्यक्ति बहुत कामासक्त हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से काम वासना से निवृत्त है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखने के लिए। जो व्यक्ति भूखा है उसको रसगुल्ला देख करके आकर्षण होगा, जिसके हृदय में, जिसके पेट भरा हुआ है, उसे कोई आकर्षण नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी वस्तु को, उसी विषय को देखने का अनुभव हमारे मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो यानी कि शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा का अर्थ है शुद्ध मन के द्वारा देखना। तो हम अपनी इंद्रियों से को लगातार जब भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं, तो इसका मतलब है कि अपने मन को भगवान की सेवा में लगते हैं। और जब मन शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तब हम भगवान की सेवा के सुख का अनुभव कर सकते हैं। हम भगवान की सेवा के द्वारा भगवान का संपर्क प्राप्त करते हैं। जैसे मैं भी गीता बोल रहा हूँ, भगवद्गीता पर चर्चा कर रहा हूँ, तो भगवद्गीता के द्वारा मैं भगवान की वाणी का संग कर रहा हूँ, भगवान का संग कर रहा हूँ। भक्ति के माध्यम से भगवान का संग करते हैं पहले दिन से ही, लेकिन इसका अनुभव और गहरा होता चला जाता है जितनी मात्रा में हमारा मन और हमारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ये बात है। और इस प्रकार से लास्ट में प्रभात बोल रहे हैं, योगाभ्यास की परम सिद्धि क्या है समझिए। योगाभ्यास के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने चर्चा कर चुके हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि। लेकिन इसमें भी योगाभ्यास की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है कि भक्ति योग के माध्यम से भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाया जाए। और बहुत सारे योगाभ्यास हो सकते हैं, जैसे ज्ञान योग में कृष्ण में अपने मन को नहीं लगाते, वो अपने आप को अपने शरीर से भिन्न देखने का प्रयास करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अभ्यास है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है भक्ति। योग की पूर्णता भी भक्ति है, और भक्ति यानी साधना भक्ति की बात करें तो अभ्यास करने में भी साधना भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, साधना भक्ति में लगा है, वो अन्य सबों से, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इस बात को भगवान आगे आप देखेंगे जाकर के, उसकी पुष्टि करेंगे आखिरी श्लोक में भगवद्गीता के 6 अध्याय के। तो उम्मीद है कुछ सब समझ पाए होंगे। हरे कृष्णा।